of in the military.
आचरण विमुखता का ही प्रमाण करते हैं। जो लोग आचरण नहीं करते
दया है, उसी ओर दया ही प्रचार कर रहे हैं। चौतन जी का क्या दया है ये तो लोग पहले कहा चुका है। अनर्पित चरिंग चार करो समर पर उन्नत उज्जवल असाम सर्वकृष्ण ये ही चैतन्य महापुरुष का दया है। संपत्ति है ये संपत्ति को सेवा प्रकाश करना ही प्रभात जी की दर्शन। कुछ कुछ साहब दृष्टि है इस लोगों का हम लोग प्रभात जी प्राकृतिक सहज रूप में चिन्हित करते हैं। वे लोग स्वतंत्र रूप में उज्जवल सामर्थ उज्जवल नीलमणि भक्ति सामर्थ सिंधु या प्रेम भक्ति चंद्रिका या जैव धर्म का अंत खंड ये प्रकार की तो गोपी प्रेम या मंजरी भाव को तो श्रेष्ठ समाज सका, लेकिन वो श्रेष्ठ भाव को पाने के लिए शुद्ध मार्ग को चिन्हित नहीं कर सका। कांच का कीट जैसा भयभीत होकर के भ्रमर पर चिंतन करते हुए भ्रमर बन जाते हैं, वैसे ही वो लोग इस उदाहरण को लेकर के मंजरी भाव को अर्थात गुरु जी से काम में फूका हुआ एक मंजरी का नाम सोचते हुए वो साधन करते हैं। ये नितांत भ्रम है, क्योंकि कांच का जो कीड़ा है उसमें भ्रमण होने का एक पोटेंसी है। ये पोटेंसी विष्ठा का कीड़ा में नहीं है। तो एक नीति शास्त्र में एक श्लोक भी है, नौ व्यापार और सत्य आपी सुखवत पाठ्य बक आता जो बक ये बगला को तुम जितना ही सिखाओ हजारों चेष्टा करो तब भी इसको सुख पक्षी जासन को पाठ करवाना ये असंभव है। इसकी पोटेंसी का तो जरूरत है ही है। तो ये ऐसा कृत्रिम साधन करने का प्रणाली किसी ग्रंथ में प्रकाशित नहीं हुआ। सेवा साधक रूपेण शिष्य रूपेण छात्र ही यह चैतन्य चरितामृत में मन सिद्ध देह भावे कोरिया भवन इसका अर्थ कभी कल्पना जब कोई सिद्ध रूप नहीं है। बड़ी गुरु वैष्णव का मुखारविंद से जब कोई साधक उनका वीरजवती कथा उनका मुंह से भगवान की मधुर महिला जब श्रवण करते हैं ये श्रवण करते करते उनका हृदय में लालसा हो सकती है। लालसा होगी ही ऐसा निश्चित नहीं है। जब ऐसा लालसा होती है तब अप्राकृत वस्तु को पाने के लिए उन्होंने उनका आरती स्वाभाविक रूप में प्रकाशित होती है। कवे हवे बोलो श्री नाम, लेकिन प्रभुमान जी कहते हैं ये अप्राकृत वस्तु के लिए निष्कपट प्रार्थना और अप्राकृत वस्तु का आरोप करके अपराधिक लीला में प्रवेश करने की चेष्टा ये दोनों में बहु अंतर है, बहु फर्क है। लेकिन ये लोग समझने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करते। प्रभा जी कहते ये बहिर् जगत वस्तु को चिंता अंतर जगत वस्तु में आरोप करने का नाम है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। या ये जगत के पशु पक्षी की जो कथा जगत में अवतार में या उनका परिकरण में आरोप करने का नाम जूम ऑफिस। इधर का इस अचीत वस्तु में चीत वस्तु का आरोप करने का नाम एनिमिज्म। ये सब चिंता स्रोत सहजावाद सृष्टि करते हैं। प्रभुपाद जी हम लोगों को इसी सहजावाद से बचाने के लिए उनका बहुलता से बचाने के लिए उनकी गोली मत स्थापित की। प्रभुपाद माथुर गौ विरह कातुर ब्रजवासी को चरण धूलि को लक्ष्य करने के लिए ही इन्होंने गोली मत स्थापित की। वही दिनों दया तो ना तो ही मोथा ना तो कदा बदल कर सको तो उन्होंने कितना रोते। प्रभुपाद जी एक समय अलामनाथ गौरव मठ में जा रहे थे रास्ता का दोनों धाम में गहीन वन है। तो उसी गहीन वन में एक बहुत दूर में एक रक्तिम वर्ण बिंब फल को देख करके उनकी ईश्वरी की और स्मृति आ गई। उन्होंने अवश्य उसी उसी दिशा बाबा जी के विराम पर देख करके शिष्य विचलित हुए हो गए। स्वच्छता कुमार जी इतना देर किस क्यों बताए सब तो नहीं काटा, इसलिए उसी दिशा में चल करके पहुंच के संधान करते करते प्रभात जी को मूर्छित अवस्था में प्राप्त परिणाम कीर्तन करके उनका फिर बच्च अवस्था में उन्होंने उन्होंने फिर ऐसा जो प्रभुपाद उन्होंने कभी विधिमान भजन को दिखाने वाले नहीं है। प्रभुपाद जी उनका उनका लक्ष्य यही था माथुर ग्रह का तो ब्रजवास के चरण में लक्ष्य करना ही, क्योंकि ब्रजरामन को संवादात्मक विचार साधु को कहिए कभी कल्याण है तो नहीं है, और ये संवादात्मक विचार तो यही विचार को लेकर के ही ये सब प्राकृत सहूर्या लोग पिच पड़ रहे। इसलिए प्रभुपाद जी हम लोगों को बचाने के एक मायावादी से सहजियाबाद से बचाने के लिए हम लोग कितना प्रयास किया, ये हम लोगों का गुरु गुरु भाग्य है जिसके कारण ये धारा के ये धारा में हम लोगों को भविष्य होने का सहयोग मिला। आज उनका श्री आशीर्वाद तिथि है, इसके आशीर्वाद तिथि में हम लोग मैं जैसे कपोट आदमी हूँ इनका कपोट आदमी होते हुए भी गुरुपाल जी आप मुझे मेरा पुष्पांजलि और आपका शुद्ध विचार उनका ये शुद्ध विचार जैसा अक्षुण अक्षुण रहे ये कह करती हूँ कृष्ण पास क्षमा।
उनके आदेश से राधा जी की नैन के समान प्रिय ये नैन मंजरी जगत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के रूप में प्रकटित हैं, इसलिए आए लोग आजकल आज से 60-70 वर्ष पहले या और भी 100 वर्ष पहले धर्म के नाम पर लोग अधर्म का सेवन करते थे। लोग महाप्रभु के विचारों को समझ नहीं सके, दूसरी की स्त्री को लेकर के राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन में भजन करना ही ये भजन समझते थे राधानुगा। धर्म के नाम पर अधर्म चारों तरफ में बोलबाला, कोई धर्म करे न करे उस वंश में गोस्वामी के वंश में आया तो वो गोस्वामी हो गया, ब्राह्मण का कर्म करे और न करे रावण की तरफ में रहे तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा और सबसे पूजा लेने का अधिकारी बनता है। ये शरीर को ही गोपी बनाकर मूछ और ये सब उड़वा कर केवल केश रख करके नाक में नथनी लहंगा चुंदरी पहन करके पुरुष लोग भी गोपी बन करके ललिता विशाखा बन करके भजन करते थे। धर्म के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वेदों का सार तात्पर्य वेदांत है, उपनिषदों को वेद का शिरोभाग कहते हैं, तथा वेदांत उपनिषदों का सार निष्कर्ष ही वेदांत है। बिना वेदांत को जाने मनुष्य का कल्याण नहीं, वो धार्मिक नहीं हो सकता, किंतु वेदांत को समझना बहुत कठिन है। जितना वेद है और उसके मंत्र हैं वो ब्रह्म में समन्वय के रूप में है, ब्रह्म को ही निर्देश करते हैं, किंतु उनमें तारतम्य है, किस मंत्र के साथ में कौन मंत्र का क्या संबंध है साधारण लोगों के लिए यह निर्धारित करना बड़ा कठिन है। इसलिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। ब्रह्म सूत्र का अप्राकृत भाष्य श्रीमद् भागवत है, सभी मानते हैं। किंतु प्राचीन काल में एक ऋषि हो गए हैं बोधायन। बोधायन ऋषि ने भागवत रहते हुए भी और उसको सुलभ करने के लिए वेदांत के समस्त प्रमाणों को और भागवत के प्रमाणों को लेकर के उन्होंने उनकी एक व्याख्या ली जिसको बोधायन भाष्य कहते हैं। तो पहला हुआ भागवत और दूसरा हुआ क्या? बोधायन भाष्य। ये सब वैष्णव विचार, भक्ति के विचार। कृष्ण निर्विशेष नहीं है, कृष्ण ही परम तत्व है, रसमय वो है, ये सब दिखलाए। जीव भी अनित्य नहीं है, नित्य है। उनकी तीन अवस्थाएं हैं, बद्धावस्था, तटस्थावस्था और मुक्तावस्था। और तीनों ये मिथ्या नहीं है। नश्वर में बद्धावस्था नश्वर है, तटस्थावस्था एक तटस्थावस्था है, और मुक्त अवस्था ही जीवों का स्वरूप परिलक्षित उसमें होता है। तो इन सब को जाने बिना वैष्णव नहीं हुआ जाता। इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने पीछे से ये दो भाष्य रहते हुए भी भागवत और बोधायन का भाष्य, उन्होंने गोविंद भाष्य। इसलिए गोविंद जी ने आदेश दिया, गोविंद देव के आदेश को पूरा करने के लिए, जगत कल्याण के लिए उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। गोविंद भाष्य में चार प्रकरण है। पहला प्रकरण है जितना वेद है वो सब एक प्रभु को ही अन्य व्यतिरेक में लक्ष्य करते हैं, उसका समन्वय दिया। तत्तु समन्वय अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बाद में बतलाया तत्तु समन्वय शास्त्र योनि। दूसरा प्रकरण क्या है? वेद में परस्पर कहीं भी परस्पर विरोधी वाक्य नहीं है, उसका समन्वय दिखलाया। तात्पर्य के अनुसार में उनका विचार। और तीसरा है साधन, और चौथा है प्रयोजन। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति तत्व, और इसमें साधन में अथवा अभिधेय में बतलाया अभ्यासार्थ आनंदमयो अभ्यासार्थ, भक्ति रसमयी है इसका अभ्यास। पर सुंदर रूप से इन चारों को उसमें दिया बलदेव विद्याभूषण ने प्रभु के आदेश से। इन सब तत्वों को नहीं जाने बिना वैष्णव नहीं हुआ जाता, यही समझो। और जो आया उसको कहा जैसे अपना दाढ़ी मोछ कमा लो, गोपी भाव बना लो और नथिया पहन लो और गोपी मंत्र ये ले लो, पैखाना करने के बाद में शौच करना भी जो नहीं जानता, वैष्णवता से कोई संबंध नहीं है, और ऐसा ही अनुकरण करते हैं, इनको कहते हैं सहजिया। उस समय सहजिया से देश भरा हुआ, अधर्म को ही लोग धर्म समझते थे। पृथ्वी ते धर्म नामे जो तो कथा चले, भागवत कहे कहां परिपूर्ण छे। विशेष करके हम जो प्रचार करते हैं अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं तो वो कर्म है। प्रभुपाद जी का ये विचार बतला रहे हैं, ये समझे इसलिए आए थे। यदि कोई प्रचार करता है भगवान का नाम करो और नहीं करता, जिनको भगवान में विश्वास ही नहीं है और पैसे के लिए रुपये के लिए अपने हानि के लिए लाभ के लिए भगवान का नाम करते हैं, और दूसरों कहते हैं ये तुम लोग हम प्रचार करते हैं हरि नाम पर और खुद नहीं करते, भगवान में आतंतिक भक्ति जिनको अनन्या भक्ति नहीं है, और दूसरों को कहते हैं ये तुम लोग
दूसरों को कहते हैं कि देखो कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा पर हो और खूब स्वार्थ से भरे जकड़े, दूसरों को कहते हैं खूब त्याग करो और अपने भोग में मत रहो। ऐसे प्रचारक प्रचारक नहीं है, ये क्या है, कली के चर है, कर्म मार्ग से भी निम्न भेद है। ऐसे ही विचार उस समय में फर्क हो रहे, लोग भक्ति नहीं जानते, खूब लाख लाख कोटि कोटि रुपया देकर के मंदिर बनाते थे और भगवान के नाम पर अपने खाते थे, पहनते थे। प्रभुपाद जी ने कहा विग्रह क्या है, हरिनाम संकीर्तन ही विग्रह है। हरिनाम संकीर्तन जिस मंदिर में नहीं है वो मंदिर सूना है, विग्रह रहने पर भी वो सूना है, उसी की पूजा यही सहजिया है। हाँ, विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम, विग्रह क्या है, कलिकाल में विग्रह क्या है, भगवान नाम संकीर्तन। जो ये करता है और उसके लिए मंदिर में प्रतिष्ठा होती है और सब लोग आकर के भगवान नाम कीर्तन करते हैं, कीर्तन के माध्यम से अर्चन, कीर्तन के माध्यम से सेवा, कीर्तन के माध्यम से पूजा, कीर्तन के माध्यम से रसोई, कीर्तन के माध्यम से सब कुछ होता है। यद्यपि कौ अन्य भक्ति कर्तव्य तदा कीर्तन ख्या भक्ति संयोग कर्तव्य, फिर संकीर्तन के माध्यम से, नहीं तो कभी काल में केवल अर्चन करेंगे ना, उसका फल नहीं होगा। वैष्णवता उसमें है ही नहीं है, जानता ही नहीं है किसको वैष्णव, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सभी बातों को इतना सुंदर विचार करके दार्शनिक भित्ति के ऊपर में प्रतिष्ठित किया, ये शुद्ध भक्ति का प्रचार। यदि प्रभुपाद जी नहीं आते तो शुद्ध भक्ति धारा नहीं रहती, अब वो भी क्रम से अब धीरे 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 लुप्त होता जा रहा है। तो अभी प्रभुपाद के लाइन में कुछ कुछ है। उन्होंने एक बात बतलाया, मैं बहुत संक्षेप में बतला रहा हूं, ऑन्टोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। ऑन्टोलॉजी किसको कहते हैं, मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, एक बाह्य विचार और एक अंतर विचार। दीक्षा के लिए कहा जिसे केवल अनुष्ठानिक दीक्षा जो होती है ये क्या है, मॉर्फोलॉजी, और शिक्षा के माध्यम से जो दीक्षा होती है वो ऑन्टोलॉजी है। ये सब विचार ऑन्टोलॉजी के हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब विचार जिसमें भर दिए जाए, इसलिए प्रभुपाद जी आए। मंदिर खूब खड़ा कर दिया, खूब उत्सव हो रहे हैं, खाना पीना सब चल रहा है, ये क्या है, मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। यदि अंतर से कृष्ण के प्रति ममता नहीं आई, वैष्णव की सेवा नहीं हुई और इस प्रकार का शुद्ध प्रचार नहीं हुआ तो सब मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। एक उन्होंने बतलाया, एक ऊपर से आता है और एक नीचे से, आरोह बाद अवरोह बाद। भक्ति क्या चीज है, अवरोह बाद, आरोह बाद नहीं है। कर्मी ज्ञानी तपस्वी जितने हैं ना, ये सब क्या है, आरोह बाद, नीचे से अपने इंद्रियों के परिश्रम से चलते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को जो पहले बांध रही थी वो क्या चीज था, आरोह बाद, अपने हम परिश्रम से कर लेंगे, इसलिए आरोह बाद। और पीछे से जो उन्होंने किया, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयाशी तो सब बंधने, उनका परिश्रम का साधन का देखा और वो अपने आप बंध गए, ये है भगवान को ऊपर से उतरना। जो लोग आरोह बाद पंथी हैं उनको भक्ति नहीं है, हम अपने साधन से भक्ति कर लेंगे। प्रभुपाद जी का विचार था जे नहीं ऐसा मत करो, आरोह बाद आए तुम योग्य पात्र बनो, उनके प्रति अनकंडीशनली सरेंडर करो, और जब ऐसा कर जाएगा शरणागत हो जाएगा, प्रभु मैं सबसे मूर्ख जगत में हूँ, हमारे जैसा और विश्व ब्रह्मांड में मूर्ख नहीं है, मैं बहुत ही दीन और हीन हूँ, आप हम पर दया करें। तो भक्ति देवी क्या करती हैं? ऊपर से ऊपर आती हैं। अन्यथा हम भक्ति को जान करके कर लेंगे, साधन के द्वारा भक्ति हो जाएगी, कस्मिन काल में नहीं होगी। प्रभुपाद जी का यह विचार था। प्रभुपाद जी छोटे छोटे विचारों को बहुत गंभीरता से लेकर के विचार करते थे। उन्होंने कहा जे सालग्राम से बादाम मत तोड़ो और खाओ। मतलब क्या? एक पुजारी जी गया ठाकुर जी के घर में और बादाम रखा था, लाल लाल होता है ना, कठिन कठिन, उसके कठोर पर्दे होते हैं, मुख में पानी भराया जे बादाम खाएंगे। तो देखा जे बादाम तोड़ने के लिए तो कुछ है नहीं ठाकुर घर में, देखा जे दो सालग्राम है बड़े बड़े, तो एक सालग्राम को नीचे रख करके दूसरे को बीच में रख करके और उससे तोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मत करो। माने क्या? भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर तुम ऐसा काम मत करो। गुरु जी के नाम पर, वैष्णव के नाम पर, भगवान के नाम पर कुछ लेकर या मिलने पर हजम मत करो, हजम नहीं कर सकेगा। कोटि काल तक जन्म जन्मांतर में उसका फल भोगना पड़ेगा। पाप करने का फल तो भोग लेते हैं नरकों में, अपराध का फल नहीं भोग, बड़ा भारी मुश्किल है उसके लिए, और नरक में जाना पड़ेगा। उन्होंने बतलाया ज्ञान के द्वारा हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। तीन अवस्थाएं हैं जीव की, बद्धावस्था, तटस्थावस्था और मुक्तावस्था। मुक्तावस्था में क्या है? स्वरूप और तद्रूप वैभव। स्वरूप मैंने कृष्ण साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अखिल सामी सिंधु, ये स्वरूप है। तद्रूप वैभव का गोलोक वृंदावन द्वारका इत्यादि, वैकुंठ इत्यादि, और वैष्णव जो भगवान के परिकर हैं, भगवान के जो अवतार इत्यादि हैं, ये सब क्या है? तद्रूप वैभव है। ये सब स्वरूप शक्ति के प्रकाश। और तटस्थावस्था क्या है? ये जीव एक तरह से न तो भगवान की सेवा है और न तो ये संसार में है, दोनों के बीच की अवस्था है। कोई अवस्था तो नहीं है ऐसी, कल्पना नहीं की जा सकती, तो भी है ना? ये निर्विशेष बात है एक तरह से। और दूसरी है बद्धावस्था। बद्धावस्था माने क्या? जीव भगवान का नित्य दास होने पर भी जब ये सब हमारे भोग्य हैं विश्व का, क्या चीज? माया के द्वारा परिणित ये विश्व जो कुछ है हमारे भोग के लिए है, इसी का नाम है बद्धावस्था। इसमें से बद्धावस्था और तटस्थावस्था दोनों भक्ति के प्रतिकूल हैं, भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। ज्ञानियों का निर्विशेष ज्ञान ये तटस्था अवस्था पर, उसी तटस्थ अवस्था में जीव सब को ही ब्रह्म कहते हैं और उसके आनंद को आनंद ब्रह्मानंद कहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा विशेष करके तीन बातें दी, एक संबंध का अवदान, एक अभिधेय का अवदान और एक प्रयोजन का अवदान। संबंध का अवदान माने क्या? कृष्ण देवताओं की तो बात क्या, समस्त अवतारों के भी अवतारी मूल हैं। ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही आराध्य हैं, इनसे ये मदन मोहन है, इनसे हमारा जीव का संपर्क है, संबंध है। अभिधेय ने क्या बतलाया? ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि हमारे लिए अभिधेय नहीं है, साधन नहीं है। हमारे लिए साधन एकमात्र भक्ति है, शास्त्रों से तरह तरह के विचार लेकर के उन्होंने स्थापित किया। ये भक्ति दो प्रकार की है, एक वैधी और एक रागानी। प्रथम अवस्था में जीवों के भोग को कम करने के लिए